नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में नई मेडिकल गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों के पोषण को सुदृढ़ करने के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की लाखों गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर सौंपेंगी। और आज पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। राजधानी में गुरु तेग बहादुर अस्पताल से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इस राष्ट्रीय संकल्प के साथ पूर्ण प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है।
हमारा टारगेट है दिल्ली की 14 से 15 साल की उम्र की जो लगभग 1,60,000 बच्चियां हैं, उनको हम इस 3 महीने के ड्राइव में फेज वाइज उनको ये वैक्सीनेशन देंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भी बेटी दिल्ली की छूटे ना। इसके लिए हमारे सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग जो है, सभी लोग इस कार्य पे लगेंगे और घर घर जाकर के इंश्योर करेंगे कि हर बच्ची को ये इंजेक्शन लग जाए।
भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने देशभर में 14 वर्ष तक की किशोरियों को मुफ्त HPV टीकाकरण उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में IMA ने कहा कि यह पहल सर्विकल कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश की लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 10 बेड की नई मेडिकल गहन चिकित्सा इकाई ICU का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इससे न केवल सुविधाओं का विस्तार होगा बल्कि यह उपचार और रोकथाम से संबंधित स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आधुनिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, नए OPD ब्लॉक बन रहे हैं, आयुष्मान भारत और व्यय वंदना योजना लागू हुई है और आरोग्य मंदिर के माध्यम से घर के पास निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान IHBAS में आधुनिक OPD भवन का शिलान्यास किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह नया ढांचा हजारों नागरिकों को बेहतर, व्यवस्थित और त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार IHBAS को आधुनिक मशीनों और विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित कर राजधानी के लिए एक सशक्त स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम के अंतर्गत लद्दाख से आए युवा प्रतिनिधियों से संवाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह संवाद भारत के उस जीवंत संस्कार का अनुभव था जहां विविधता में एकता केवल विचार नहीं बल्कि व्यवहार बनती है। उन्होंने कहा कि युवा ही वह सेतु है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और लद्दाख से दिल्ली तक राष्ट्र को जोड़ते हैं। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने आज बवाना विधानसभा क्षेत्र में नवीन पेयजल लाइन का लोकार्पण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस नई लाइन के माध्यम से अनेक परिवारों को नियमित, स्वच्छ और बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी जिससे क्षेत्र के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 12 मार्च तक फीस वृद्धि पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली के अभिभावकों के लिए ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि आदेश सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। श्री सूद ने कहा कि वर्षों से दिल्ली के अभिभावक मनमानी फीस वृद्धि से परेशान थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12 मार्च की सुनवाई के बाद स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन तक कोई भी बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है नवाचार, उत्पादन, अनुसंधान और समाधान करने की क्षमता। दिल्ली विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से अनुसंधान, उद्यमिता और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के केंद्र बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की ईमानदारी, योग्यता, करुणा और नवाचार की भावना पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य निर्भर करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और पोषण अभियान ने देश में पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
मिड डे मील सरकार के द्वारा वर्षों से दिया जा रहा है, परंतु सुबह के जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता महसूस की गई, उसको अक्षय पात्रा के साथ मिलकर के किया जाना हम सबके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। और ये विजन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि पोषण हर बालक के लिए बहुत जरूरी है। मॉर्निंग डाइट से न केवल स्वास्थ्य लाभ होगा बालकों को, बल्कि एक मोटिवेशन भी रहेगी समय से स्कूल आने के लिए, उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विधि मामलों के विभाग ने देशभर में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों सहित न्यायपालिका के हर स्तर पर लंबित मामलों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु और सेवा शर्तों के संबंध में ब्रिटिश काल के मानदंडों पर अड़े नहीं रहने को कहा है। साथ ही उच्च कुशल तटरक्षक अधिकारियों के लिए मापदंडों की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया। न्यायालय की पीठ ने तटरक्षक बल के सभी रैंक कर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति अनिवार्य करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली की अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। उदय भानु नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली पुलिस की 7 दिन की हिरासत बढ़ाने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। उदय को 50,000 के बॉन्ड पर जमानत दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर राष्ट्रीय और जनहितों से समझौता करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भारत मंडपम में कांग्रेस के युवा विंग द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की भी आलोचना की। श्री भाटिया ने आरोप लगाया कि पार्टी प्रदर्शन में शामिल अपने नेताओं को संरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयानों को खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि यह सभी आरोप निराधार हैं। अदालत के आदेश पर श्री रिजिजू ने कहा कि यदि अदालत के आदेश में कोई त्रुटि है तो मामले को उच्च न्यायालय या बड़ी पीठ के समक्ष ले जाया जा सकता है। कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आरोप लगाया कि शराब घोटाले की जांच के बाद सामने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा सैकड़ों मोबाइल फोन तोड़े गए। प्रेस वार्ता के दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के गंभीर टिप्पणियों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं को गुनहगार नहीं माना। श्री मिश्रा ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें दिल्ली सरकार को राजस्व हानि होने की बात कही गई।
सीएजी के आंकड़े सारी दिल्ली के सामने और सारे देश के सामने हैं। क्या ये सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सरकार में बैठे थे तो शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटने की बात करके पूरे दिल्ली को शराब के नशे में डुबोया? न जाने कितनी माताएं और बहनें रोई होंगी जिनके परिवार बर्बाद हुए शराब के कारण, नशे के कारण। आज आप अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, अभी तो मामला हाईकोर्ट में गया है, अभी आप छूटे नहीं है इस पाप से, इस भ्रष्टाचार से।
इसी बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और अन्य को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है। सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत ने जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया और साक्ष्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के लाखों गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर का उपहार दिया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि सोमवार को राजधानी के 15 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए लगभग 129 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन द्वारा आयोजित फल, सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी में शामिल हुई और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि किचन गार्डन को बढ़ावा देने वाली यह प्रदर्शनी इसके लाभों को जन जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि किचन गार्डन केवल एक शौक नहीं बल्कि स्वस्थ परिवार, शुद्ध भोजन और हरित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम है।
मैं बहुत बधाई देती हूँ ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन को कि जो इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी कुछ प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने इंटरेस्ट को बनाए हुए हैं। आप जैसी शख्सियत जो अपने टेरेस पे या जो थोड़ी सी जगह हमें मिल रही है घर में, आजकल बहुत बड़े बड़े घर लोगों के पास नहीं है, पर जितना स्पेस है उसी में आप लोग बड़े मन से जो प्लांटेशन करते हैं, मैं सही मायने में आप सबको ग्रीन योद्धा मानती हूँ।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने आज घोषणा की कि मंत्रालय देशभर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए 2 से 24 मार्च तक कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री ओराम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जनजातीय भाइयों और बहनों को अपने कौशल, रचनात्मकता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को प्रदर्शित करने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना है।
इसमें हमारा जनजाति भाई बहन लोग बहुत सारे एक्टिविटी के लिए उनको स्कोप मिलेगा। उसके साथ साथ सीएसआर कॉन्क्लेव भी होगा, ट्रैवल बिजनेस कॉन्क्लेव भी होगा। तो इसमें सीएसआर में से ज्यादा ट्रैवल लोगों को प्रोत्साहन दे, उनके लिए मदद करे, इसके लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे। उसके साथ बिजनेस कॉन्क्लेव, आज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए ट्रैवल भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं।
और आज पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। एक रिपोर्ट।
ये दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस अभूतपूर्व खोज के लिए सर रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां आयोजित की गयी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन किया। इस वर्ष का विषय है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत की उत्प्रेरक। ये विषय वैज्ञानिक प्रगति को भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण से जोड़ता है और महिला शोधकर्ताओं और नव प्रवर्तकों की भूमिका को मान्यता देता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी में दिनभर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में सर्विकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में नई मेडिकल गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों के पोषण को सुदृढ़ करने के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया और आज पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।